यदि आम व्यक्ति से पूछा जाए कि ईश्वर दर्शन कैसे होता है, तो उसके मन में एक ही कल्पना आती है कि राम मेरे सामने प्रकट हो जाएं या कृष्ण मेरे सामने शरीर रूप में प्रकट हो जाएं, तब मुझको ईश्वर दर्शन हो जाएगा। एक बार मैंने अपनी मां से पूछा कि आपको ईश्वर दर्शन हुआ है क्या, उन्होंने भी मुझको यही कहा कि गुरुदेव खुद ईश्वर थे, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझको मिल गया, इसलिए ईश्वर दर्शन हो गया। फिर मैंने आगे उनसे पूछा कि महाराज जी ने तो आपको दीक्षा दी थी, जाप करने के लिए मंत्र दिया था, फिर उसकी क्या आवश्यकता है, वो कोई कॉलेज एजुकेशन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसका उत्तर तो कोई नहीं दे सकी, वो चुप हो गए। हम लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि शरीर रूप में प्रभु कहीं यदि प्रकट हो जाए तो हमको ईश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। महर्षि रमण के एक शिष्य हुए हैं मिस्टर पुंज, वो पंजाब के रहने वाले थे। उनको अपने जीवन में जब मात्र उनकी 6 वर्ष की आयु थी, उस समय से कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे। अचानक वो देखते थे कि सामने कृष्ण खड़े हुए हैं और उनका दर्शन करके उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी। बाद में वो मिलिट्री में भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद उनके मन में एक ही इच्छा बनी रहती थी कि प्रभु के दर्शन होते रहे। जबकि कृष्ण के दर्शन को बार बार होते थे, तो जब भी कोई महात्मा मिलता था उसे यही पूछते थे मुझको ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ईश्वर के दर्शन साक्षात होने के बाद भी उनके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई, ये उनके मन में जिज्ञासा बनी रहती थी कि ईश्वर के दर्शन कैसे हो। खैर, जब उनकी ये व्यथा बढ़ी अंदर, तब उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया मिलिट्री से और इसी मार्ग की खोज में लग गए। एक दिन की बात है, उनके घर पर एक साधु आया भिक्षा मांगने के लिए। उस समय वो लंच कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि साधु को अंदर बुला लो, उनको भी भोजन करा दो। खैर, अंदर बुलाया गया, भोजन कराया गया। भोजन करने के पश्चात उन्होंने उनसे भी वही प्रश्न किया, क्या आप किसी ऐसे साधु को जानते हैं जिसने ईश्वर दर्शन किया हो? तब वो बोले कि हाँ, एक साधु है जो तिरुवन्नामलाई में रहता है, वहां अरुणाचल हिल है, वहां वो रहता है, उसने ईश्वर दर्शन किया है। कोई बात नहीं, साधु तो चला गया वो। अब ये सोचने लगे कि मैं वहां कैसे जाऊं, इनके पास पैसे नहीं थे। प्रभु की लीला देखिए, ان کے پاس مدراس سے ایک آفر آیا، ایکس سروس مین کو جاب مل جاتی ہے سروس جوائن کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی کرائے کے روپ میں چیک بھی ساتھ میں آ گیا۔ اب یہ مسٹر پنجو جو ہیں، انہوں نے جانے کا پروگرام بنایا مدراس کہ وہاں چل کر سروس جوائن کر لیتے ہیں۔ جب مدراس پہنچے تو من میں سوچا تروناملائی تو کوئی دور نہیں ہے، پہلے وہیں ہو آتے اس کے بعد سروس کریں گے۔ خیر وہ رمن آشرم پر آ گئے، وہاں مہرشی رمن کے کمرے میں جیسے ہی پرویش کیا انہوں نے، کیا دیکھتے ہیں کہ جو سادھو میرے گھر آیا تھا یہ تو وہی ہے۔ اس کو دیکھ کر ان کے من میں وہم ہو گیا کہ لگتا ہے یہ کوئی نقلی سادھو ہے، پہلے اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے اور پھر پہلے سے آ کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مورکھ بنایا جا سکے۔ جب یہ بات اس کے من میں آئی تو اس نے کہاں ٹکنا تھا، وہ باہر نکلا، اپنا بیڈنگ اٹھا کر واپس جانے لگا۔ تبھی آشرم کے ایک ویکتی نے ان کو دیکھا، یہ ابھی تو آیا تھا، ابھی واپس جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے جا کر پوچھا، آپ ابھی تو آئے تھے، کیا مہرشی رمن سے آپ کی بات چیت نہیں ہوئی؟ تب اس نے ساری بات ان کو بتا دی۔ انہوں نے کہا، مہرشی رمن آج تک یہاں سے کہیں گئے ہی نہیں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، چلیے میں آپ کی بات چیت کراتا ہوں۔ خیر وہ ان کو ساتھ لے گیا، جب مہرشی رمن سے بات چیت کرائی تب اس کو کچھ سنتوش ہوا۔ اس کے پشچات مہرشی رمن کے ٹہلنے کا ٹائم ہو گیا، شام کا وقت تھا، وہ ٹہلنے چلے گئے پہاڑی پر، اور یہ بھی ٹہلنے چلا گیا۔ جب واپس آیا پھر مہرشی رمن کے سامنے بیٹھے، اب وہ مہرشی رمن سے کہتا ہے، مہرشی ابھی جب میں پہاڑی پر ٹہل رہا تھا تو مجھ کو ساکشات کرشن کے درشن ہوئے۔ اب مہرشی رمن اس سے کہتے ہیں کہ تم کو بار بار کرشن کے درشن ہوتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، تمہاری مانسک بے چینی ویسی ہی بنی رہتی ہے، ایسے درشن کا کیا لابھ؟ اسی لیے جو انتریامی ایشور ہے اس کے جب تک درشن نہیں کرو گے من کی بے چینی ختم نہیں ہوگی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے ان سے سادھنا پدھتی پوچھی اور جیسا انہوں نے گائیڈ کیا اس کے انوسار پھر اس نے ایشور کی بھکتی کرنی پرارمبھ کی۔ تو یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی اس کا گیان بہت ضروری ہے تاکہ ستپرشوں کا جو مارگدرشن ہے وہ جو سکھاتے ہیں کہ ایشور اندر ہے اور اس کو جب تک نہیں جانو گے من کی بے چینی سماپت نہیں ہو۔ اور جگد گرو شنکراچاریہ بھی کہتے ہیں، سوا سروپان سندھانم بھکتی ہی اتیابھیدیتے، اپنے سروپ کا انوسندھان کرنا ہی بھکتی ہے، ارتھات میں کون ہوں یہ جاننا ہی بھکتی ہے، اسی کو آتم ساکشاتکار کہتے ہیں، اسی کو ایشور درشن کہتے ہیں۔ تو مہرشی رمن اس بات کو سمجھا رہے ہیں ایک بھکت کو، وہ وارتالاپ ذرا میں آپ تھوڑا سا اس کا انش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے من میں بھی اس پرکار کی جو کلپنائیں بیٹھی ہیں اس کو نکالیں اور گرو کے مارگدرشن کے انوسار ایشور کی سادھنا، ایشور کی بھکتی کرنا پرارمبھ کریں۔ اس نے پوچھا، برہم تتھا ایشور میں کیا سمبندھ ہے؟ کیونکہ دو شبد ہم سنتے ہیں، کبھی برہم سنتے ہیں، کبھی ایشور سنتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ برہم اور ایشور میں کیا انتر ہے؟ اب مہرشی رمن کہتے ہیں، برہم کو جگت کے سندربھ میں ईश्वर कहा जाता है। जब ब्रह्म कहते हैं तो फिर वहां जगत की बात नहीं आती। वाणी भी कह रही है कि सारा संसार ब्रह्म रूप है, सारा संसार ब्रह्म रूप। तो जब ब्रह्म है तो जगत नहीं है, लेकिन जब ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर किसके लिए है? जगत के लिए। ईश्वर जो है जगत के संदर्भ में तो उसको ईश्वर कहते हैं, यदि जगत नहीं है तो इस सारे जगत में एक ही सत्ता व्याप्त है जिसको ब्रह्म कहते हैं। सब जग रूप ब्रह्म का भेद भ्रम ना कोई। तो आगे पूछता है वो, जिस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर से बातें करते थे, क्या उस प्रकार बातें करना संभव है? हमने कई बार सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस के आगे मां साक्षात खड़ी हो जाती थी और वो उनसे ऐसे ही बातें करते थे जैसे हम आप एक दूसरे से बातें करते हैं। तो उसी के बारे में मन में संशय है तो वो पूछ रहा है, जिस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर से वार्ता करते थे, क्या उस प्रकार बातें करना संभव है? महर्षि कहते हैं, जब हम एक दूसरे से वार्ता कर सकते हैं तो हम ईश्वर से उसी प्रकार बात क्यों नहीं कर सकते? अब भक्त कहता है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? महर्षि कहते हैं, इसके लिए मन की शुद्धता एवं शक्ति तथा ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मन की शुद्धता चाहिए, शक्ति चाहिए तथा ध्यान का अभ्यास चाहिए, तब यह हो सकता है कि ईश्वर से आप साक्षात भी बात कर सकते हैं, ये असंभव नहीं है। तो बात सीधी सी है कि जब जगत मौजूद है तब ईश्वर है, उस ईश्वर से मनुष्य का व्यक्तिगत संबंध भी बन सकता है, लेकिन उस दर्शन से उसको परम संतोष की प्राप्ति नहीं होगी, उसका बंधन खत्म नहीं होगा। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस की हालत थी, कई बार तो ऐसा हो जाता था कई कई दिन मां उनको दर्शन नहीं देती थी, आंख फाड़ फाड़ के देखते रहते थे। एक बार तो ऐसा हो गया कि 3 दिन तक वो कहते हैं कि उनकी पलक ही नहीं झपकी, इतनी तीव्र उनके अंदर लगन थी या इच्छा थी ईश्वर दर्शन की कि 3 दिन तक उनकी पलक ही नहीं झपकी। पलक का झपकना बंद हो गया तब वो शीशे में खड़े होकर देखते हैं कि मेरी आंखों को क्या हो गया कि पलकें ही नहीं झपक रही। ऐसी हालत जब उनकी हुई तब वो जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको वो मां कहा करते थे, हमको पार तो ईश्वर ही लगाएगा। तब ईश्वर ने क्या व्यवस्था की कि तोतापुरी को रामकृष्ण परमहंस के पास भेज, तो तोतापुरी ने सिखाया उनको कि किस प्रकार अंतर्यामी ईश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने विश्वास ही नहीं किया उनके ऊपर, उनका समर्पण तो मां के प्रति था। तो वो गए, उन्होंने कहा मां से पूछ लूं, मां यदि परमिशन देती है तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मां से पूछा, मां ने कहा मैंने ही उसको भेजा। तब जाकर तोतापुरी ने जैसे बताया वैसे उन्होंने ध्यान लगाया और उनको समाधि अवस्था प्राप्त। तो इस प्रकार देखिए कि जो सत्पुरुष कहते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही इत्यभिधीयते, ये ऐसे ही बात नहीं है। सारे गुरु यही बात कहते हैं और सारे शास्त्र भी यही बात कहते हैं। हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमने उन लोगों का संग किया है जिन्होंने कल्पना यही की है मन में कि ईश्वर का कोई रूप होता है ठीक वैसे ही जैसे कि मेरा रूप। आगे वो कहते हैं, कहते कि वो भक्त कहता है कि जब महर्षि रमण ने कहा कि मन की शुद्धता शक्ति तथा ध्यान की ध्यान का अभ्यास आवश्यक है, अब वो कहता है ये अवस्थाएं होने पर क्या ईश्वर प्रकट होता है। अब महर्षि रमण कहते हैं ऐसी अभिव्यक्ति उतनी ही सत्य है जितनी की तुम्हारी स्वयं की सत्यता। दूसरे शब्दों में जब तुम स्वयं को देह मानते हो, जैसे जागृति में तुम स्थूल पदार्थ देखते हो, जब सूक्ष्म शरीर अथवा मानसिक स्तर पर रहते हो जैसे कि स्वप्न में, तुम वैसे ही सूक्ष्म पदार्थ देखते हो। जो दृश्य दिखते हैं उनका संबंध दृष्टा की अवस्था से है, ईश्वर के दर्शनों के संबंध में भी ऐसा ही है। तो बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जब तक तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो कि मैं शरीर हूं, यही मेरा वास्तविक रूप है, तब तक ईश्वर भी तुम्हारे लिए शरीर ही रहेगा। यदि उसके दर्शन होंगे तब शरीर रूप में ही होंगे। ये तुम्हारे मन की हालत के अनुसार ईश्वर के दर्शन की कल्पना तुम्हारे अंदर मौजूद है और वैसे ही तुम्हारे आगे ईश्वर प्रकट हो सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मन ही तो मेरे लिए मुसीबत है, तो इस मन से मुझको कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। आगे वो कहते हैं पर्याप्त अभ्यास के बाद ईश्वर का आकार जिस पर ध्यान किया जाता है स्वप्न में दिखता है तथा बाद में जागृत में भी दिख सकता है। कि मैंने खुद उन प्रेमियों से भेंट की है जिन्होंने महाराज जी को उनकी शारीरिक मृत्यु के पश्चात साक्षात आमने सामने ऐसे देखा जैसे हम एक दूसरे को देखें। उसी बात को महर्षि रमण कह रहे हैं कि पर्याप्त अभ्यास के बाद ईश्वर का आकार जिस पर ध्यान किया जाता है पहले स्वप्न में दिखता है तथा बाद में जागृत में भी दिख सकता है। तो अब वो भक्त अगली बात पूछता है क्या ईश्वर साक्षात्कार की यही अवस्था है, क्या इसी को ईश्वर का दर्शन या ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। अब महर्षि रमण कहते हैं कि वर्षों पूर्व जो एक घटना घटी थी उसको सुनो। अब वो घटना सुनाते हैं। नामदेव नामक एक संत हुए हैं, वे विठोबा के दर्शन, उनके साथ वार्तालाप एवं क्रीड़ा उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार हम आपस में एक दूसरे से करते हैं। विठोबा महाराष्ट्र में कृष्ण को कहते हैं। वे अपना अधिकतर समय मंदिर में विठोबा के साथ खेलने में व्यतीत किया करते थे। देखिए इनकी क्या हालत थी, नामदेव की क्या हालत थी कि साक्षात कृष्ण उनके साथ खेला करते थे, ये रोजाना का प्रोग्राम था उनका। एक अवसर पर बहुत से संत इकट्ठे हुए जिनमें अत्यंत प्रसिद्ध संत ज्ञानदेव भी थे। ज्ञानदेव ने संत गोरा कुमार को उनकी पकी मिट्टी के पात्र की परीक्षा करने की योग्यता के आधार पर संतों की मिट्टी की परिपक्वता के परीक्षण करने का निर्देश दिया। तो गोरा कुमार जो थे वो कुमार ही थे, इसीलिए संत ज्ञानदेव ने क्या कहा कि उनके पास एक छोटी सी छड़ी थी कि इस छड़ी से ये जितने भी संत बैठे हैं इनकी परीक्षा करो कि इससे कौन सा घड़ा कच्चा है कौन सा पक्का है, अर्थात कौन पूर्ण संत हो गया कौन अभी कच्चा है। विनोद भाव से गोरा कुमार ने अपनी छड़ी प्रत्येक के सिर पर जैसे परीक्षण कर रहे हों कोमलता पूर्वक लगाई। जब वे नामदेव के समीप आए तो उन्होंने क्रुद्ध होकर विरोध प्रकट किया। सब व्यक्ति हंसने लगे तथा व्यंग करने लगे। नामदेव क्रुद्ध होकर मंदिर में विठोबा के समीप आए। अब विठोबा ने उत्तर दिया कि संतों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इस आकस्मिक उत्तर से नामदेव को और अधिक दुख हुआ। उन्होंने कहा आप परमेश्वर हैं, मैं आपके साथ वार्तालाप करता हूं तथा खेलता हूं, क्या मनुष्य इससे भी अधिक कुछ प्राप्त कर सकता है। अब विठोबा ने कहा संत जानते हैं, अब नामदेव बोले, यदि आपसे भी कोई अधिक रियल है या वास्तविक है तो बताने की कृपा करें। विठोबा बोले, हम आपस में इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि मेरी सलाह तुम्हें आवश्यक रूप से प्रभावित नहीं करेगी। वन में भिक्षु संत के दर्शन करो तथा सत्य को जानो। इस प्रकार नामदेव विठोबा द्वारा बताए हुए संत से मिले। चूंकि संत नंगे एवं मैले थे तथा भूमि पर लेटे हुए शिवलिंग पर चरण रखे हुए थे, नामदेव उनकी पवित्रता से प्रभावित नहीं हुए। नामदेव को आश्चर्य हुआ कि ये संत किस प्रकार हो सकता है। इसके विपरीत संत ने नामदेव से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें विठोबा ने यहां भेजा है? नामदेव को इससे बहुत आश्चर्य हुआ तथा उसमें संत की महानता के प्रति अधिक आस्था उत्पन्न हो गई। इसलिए नामदेव ने पूछा, आपको संत कहा जाता है, फिर आप इस लिंग को क्यों अपवित्र कर रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, वास्तव में मैं इतना वृद्ध तथा दुर्बल हूं कि उचित कार्य कर नहीं पाता। कृपया मेरे पैरों को उठाकर ऐसी जगह रख दें जहां लिंग ना हो। नामदेव ने संत के चरण उठाकर अन्य स्थान पर टिका दिए, किंतु उनके नीचे भी लिंग था। जहां पर भी चरण रखे गए वहां उसी समय तुरंत नीचे से लिंग प्रकट हुआ। अंत में नामदेव ने उनके चरण स्वयं अपने ऊपर रख लिए तो वे भी लिंग बन गए। तब नामदेव को यह बोध हुआ कि परमात्मा सर्वव्यापी है तथा इस सत्य को जानकर वे वहां से विदा हुए। घर आकर वे कई दिन तक देव मंदिर में नहीं गए। अब विठोबा ने स्वयं उनके घर जाकर उनसे पूछा कि अब वे देव मंदिर में परमेश्वर के दर्शन करने क्यों नहीं आते। नामदेव का उत्तर था, क्या कोई स्थान ऐसा है जहां परमेश्वर ना हो? कथा का आशय स्पष्ट है, ईश्वर के दर्शनों का स्थान आत्म साक्षात्कार की भूमिका से नीचे। तो आत्म साक्षात्कार इस देह के अंदर होता है और ईश्वर दर्शन जिसको हम कहते हैं वो देह के बाहर होता है, उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। इसीलिए जीव का बंधन समाप्त नहीं होता। एक भक्त ने एक प्रश्न और इस बारे में पूछा उनसे, ईश्वर का दर्शन कैसे हो? महर्षि रमन से पूछते हैं वो, ईश्वर का दर्शन कैसे हो? अब महर्षि रमन उत्तर देते हैं कि अंदर। यदि मन को अंतर्मुख कर लें तो ईश्वर आंतरिक चैतन्य के रूप में व्यक्त होता है। अब भक्त पूछता है, ईश्वर सब में है, उन सब पदार्थों में जो हम देखते हैं, कहा जाता है हमें उन सब में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। अब महर्षि कहते हैं, ईश्वर सब में है और दृष्टा में है। मैं जो देख रहा हूं मैं दृष्टा हूं। ईश्वर सब में है और दृष्टा में है, ईश्वर और कहां दिखेगा? उसकी प्राप्ति बाहर नहीं हो सकती, उसकी अनुभूति अपने अंदर ही होनी चाहिए। दृश्य पदार्थों को देखने को मन की आवश्यकता है, बिना मन के कैसे देखोगे बाहर आओ? दृश्यों में ईश्वर की कल्पना, दृश्यों में ईश्वर की कल्पना मन की क्रिया है, पर यह यथार्थ नहीं है, यह वास्तविक ईश्वर नहीं है। संकल्प रहित आंतरिक चैतन्य ही परमात्मा होता है। अब आप देखिए कि इससे स्पष्ट निर्णय और क्या हो सकता है। इसीलिए रामायण में आता है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूप। भगवान राम क्या कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का यही फल है कि जीव अपने स्वरूप को अर्थात अपनी आत्मा को जान लेता है। तो बाहर जितने भी ऋषि आते हैं, जितने भी अवतार आते हैं, वो यही सिखाने आते हैं कि मैं तेरे हृदय में विद्यमान हूं, तेरे अंदर हूं, तेरा अंतर्यामी हूं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से यही तो कह रहे हैं, अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, सर्वभूताशय स्थिता, सारे प्राणियों के अंदर विद्यमान हूं। तो बताओ कृष्ण दर्शन बाहर होंगे या अंदर होंगे? और महाराज जी भी यही कह रहे हैं, सतगुरु तो अंतर्रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उगार। महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि गुरु जिसको तू बाहर शरीर रूप में देख रहा है ये गुरु नहीं है। प्रेमी जब उनके शरीर को दबाते थे तो महाराज जी खुद कहते थे उसे, प्रेमी ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है। इस शरीर को वो खल्लड़ कहते थे, ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है। जिस समय साधना के बाद अंदर अनुभव होगा उस समय तो उसको पता लगेगा गुरु को मैंने समझा क्या था, गुरु निकला क्या। तो इसलिए ये बाहर की चीजों में हम अपना वक्त नष्ट ना करें, चाहे 10 जन्म बाद लोगे गुरु का आसरा एक दिन लेना ही पड़ेगा। और सही साधना, सही ईश्वर की भक्ति तब आपकी प्रारंभ होगी। इसीलिए सारा जो गुरु ज्ञान है, सारे शास्त्रों का जो ज्ञान है, सारे अवतारों सत्पुरुषों का जो ज्ञान है, वो यही कहता है कि आत्म अनुसंधान इस देह के अंदर होता है। क्योंकि जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, वो बाहर नहीं है, वो अंदर विद्यमान है। इसीलिए महा जी कहते थे, प्रेमी जब अंदर ईश्वर का दर्शन होगा तो सारा जगत तुझको फिर ईश्वर रूप नजर आएगा। यदि तू किसी आकार में ईश्वर को देखना चाहता है, अंतर्यामी ईश्वर का दर्शन होने के बाद जिस रूप में तू संसार में देखना चाहेगा वो रूप तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। इसीलिए मन से बाहर दर्शन होता है, और ये मन जब शुद्ध हो जाता है, या यूं कह लें जब मन शांत हो जाता है, तब अंतर्यामी ईश्वर का दर्शन होता है। वो ईश्वर का असली दर्शन है, जिसके पश्चात मनुष्य का ये जो मन का बंधन है ये सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। वो पूर्ण प्रसन्न, पूर्ण आपकाम, पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। ओ ब्रह्म सत्य।